ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा लिखित विजन टू एक्शन किया गया सार्वजनिक। पार्टी में गलती करने वाले किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष प्रचंड ने किया साफ। स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त टकाल ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों निश्चित दूरी में क्लिनिक खोलने नहीं दिया जाएगा। इस संबंधी जल्द ही कानून लाए जाने की हो रही है तैयारी। और चीन में कोरोना वायरस को नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होने के बावजूद अन्य देशों में दिख रहे संक्रमण प्रति WHO ने जताई चिंता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा लिखित विजन टू एक्शन पुस्तक को आज सार्वजनिक किया गया है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में प्रधानमंत्री ओली की 69वीं जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमीरे और शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी ने आज संयुक्त रूप से सार्वजनिक किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि अब देश समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के अभियान में आगे बढ़ चुका है और अब आने वाले दिनों में किसी को भी रोटी कपड़ा और मकान की तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि उत्पादन और उत्पादकत्व को बढ़ाकर देश के निर्यातकर्ता देश के रूप में रूपांतरण करना वर्तमान सरकार का दायित्व है। साथ ही उन्होंने बताया कि नेपाल को विद्युत निर्यातक के रूप में पहचान मिल चुकी है, इसलिए अब आने वाले दिनों में देश अवश्य ही नए आयामों के साथ आगे बढ़ेगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा, गलती करने वाले किसी को पार्टी की ओर से कोई छूट नहीं दी जाएगी। आज प्रेस संगठन नवलपुर द्वारा नवलपुर में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि अगर कोई गलती करेगा तो उसे पार्टी की ओर से संरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि संचार मंत्री के मामले में प्रधानमंत्री ने तत्काल पहलकदमी की और संबंधित निकाय इस विषय में जांच कर रहा है। MCC सहयोग के संबंध में उन्होंने विश्वास जताया कि इस विषय में अध्ययन कार्यदल द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन का विस्तृत अध्ययन कर परिमार्जन के साथ अनुमोदन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि नेकपा के अंदर किसी भी तरह का आंतरिक विवाद नहीं है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने कहा कि सामुदायिक विद्यालयों में चैत महीने के अंदर अपर्याप्त दरबंदी को पूरा किया जाएगा। आज काठमांडू में एक कार्यक्रम के दौरान ये बताते हुए कि अभी कुल 39,000 शिक्षकों की पोस्ट कम है, उन्होंने बताया कि स्थानीय तहों से पोस्ट सृजित किए जाएंगे और चैत महीने तक दरबंदी पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार के बजट के बलबूते ही सुधार संभव नहीं है, बल्कि सामुदायिक विद्यालयों को निजी विद्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के हिसाब से शिक्षा देनी होगी। ये बताते हुए कि शिक्षा नीति बनकर तैयार हो चुकी है और सरकार अब शिक्षा आयन लाने की तैयारी में है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त डकाल ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक निश्चित दूरी तक अपना क्लिनिक न खोल सके, ऐसा कानून लाया जा रहा है। मोरंग के विराटनगर में जारी विराट एक्सपो कृषि तथा औद्योगिक मेला के आज समापन कार्यक्रम में मंत्री डकाल ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों के लिए कार्यालय समय तक के लिए अस्पताल में ही रहने की व्यवस्था की गई है। बागमती प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय सुरक्षा गोष्ठी आज से प्रदेश की राजधानी हेटौड़ा में शुरू हुई है। बागमती प्रदेश के आंतरिक मामला एवं कानून मंत्री शालिकराम जमर कट्टेल की अध्यक्षता में शुरू हुई गोष्ठी में प्रदेश के सभी 13 जिलों के नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के प्रमुख लगायत प्रदेश स्तरीय सुरक्षा निकाय प्रमुखों की सहभागिता है। गोष्ठी में शांति सुरक्षा की अवस्था, नागरिकता पासपोर्ट वितरण, सीमा समस्या समाधान लगायत विषयों में विचार विमर्श होगा। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ के थाहै ना, नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *1415 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई। त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *1415 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने कहा कि सरकार के प्रति जनता का विश्वास घटता जा रहा है। आज पर्वत में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर भट्टराई ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इन दो वर्षों में सरकार ने कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं किया है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा ने एमसीसी को देश के हित में बताया है। धनगढ़ी में आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष थापा ने कहा कि एमसीसी को दलीय सहमति में तैयार किया गया है और इस विषय में विवाद करने का कोई औचित्य नहीं है। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर शेखर कोइराला ने कहा कि सरकार गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। आज नेपालगंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता डॉक्टर कोइराला ने कहा कि सरकार जन अपेक्षा विरुद्ध काम कर रही है और सरकार जनता को विकास और सुशासन नहीं दे पा रही है। दांग की घोराही उपनगर पालिका के घोराही के इतिहास को झलकाने के लिए घोड़े की प्रतिमा को रखा गया है। उपमहानगर पालिका के वार्ड नंबर 14 और 15 की गुमराह चौक में दो घोड़ों की प्रतिमाओं को रखा गया है। प्रदेश 5 के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल ने इन प्रतिमाओं का अनावरण किया। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने चितवन की माड़ी नगर पालिका 4 के स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए 4 दिनों से आमरण अनशन पर रहे अनशनकारियों की मांगों को पूरा करने का आग्रह सरकार से किया है। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। बता दें कि अनशनकारियों की मुख्य मांगे राष्ट्र निकुंज तथा वन्य जंतु संरक्षण और 5वें संशोधन नियमावली 2076 का पुनः संशोधन है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या चीन को छोड़कर अन्य देशों में काफी कम बेशक है, लेकिन बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के ही अन्य देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण होना भी चिंता का विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव डॉ टेड्रोस गेब्रेसेस ने बताया कि हालांकि चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर में कमी आई है, लेकिन ज्ञात हो कि दक्षिण कोरिया, इटली और ईरान के साथ ही अन्य देशों में भी संक्रमण फैला है। चीन को छोड़कर अन्य 26 देशों में 1200 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में इस बीमारी से अब तक 2345 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 75,567 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी के केंद्र रहे हुबेई में ही सिर्फ 62,662 लोग कोरोना से ग्रसित हैं, जबकि हुबेई की राजधानी वुहान में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या 45,346 है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पिछले 18 घंटे में चीन में 118 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 892 नए मरीजों की पहचान हुई है। इस बीच चीन की राजधानी बीजिंग में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या में अचानक इजाफा देखा गया है। बीजिंग के सेंट्रल सिटी हॉस्पिटल ने 36 नए मरीजों का टेस्ट पॉजिटिव होने की घोषणा की है। 2 सप्ताह पहले इस शहर में मात्र 9 कोरोना पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा लिखित विजन टू एक्शन किया गया सार्वजनिक। पार्टी में गलती करने वाले किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने किया साफ। स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त डकाल ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों का निश्चित दूरी में क्लिनिक खोलने नहीं दिया जाएगा, इस संबंधी जल्द ही कानून लाने की हो रही है तैयारी। और चीन में कोरोना वायरस को नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होने के बावजूद अन्य देशों में दिख रहे संक्रमण प्रति WHO ने जताई चिंता। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।
आवाजले सुने सम्पूर्ण नेपाल, रेडियो नेपाल। नेपाली माटोको आवाज रेडियो नेपाल।